रासायनिक खेती जहर है जहर है जहर है।
नमस्कार, शाश्वत योगिक खेती कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं अमित आपका दोस्त एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, शाश्वत योगिक खेती यानी कि जीवन में श्रेष्ठता लाना, जीवन में श्रेष्ठता लाना यानी कि अपने आचरण, अपने व्यवहार, अपने विचारों का शुद्धिकरण करना, यानी कि धीरे 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 अपने जीवन से बुराइयों को हटाते जाना। कार्यक्रम में पिछले कुछ कड़ियों से हम चर्चा करते आए हैं क्रोध के ऊपर, गुस्से के बारे में। गुस्सा एक महाविकार है, एक बुराई है जिसे हमें सुलझाना ही है, जिसका हमें निदान पाना ही है। आज के कार्यक्रम में भी हम गुस्से के निदानों के बारे में, गुस्से के निवारणों के बारे में चर्चा करेंगे और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चंडीगढ़ से पधारे हमारे बीच में ब्रह्मा कुमार ओमकार चंद भाई। भाई जी, आपका एक बार फिर से स्वागत है।
ओम शांति।
ओम शांति। भाई जी, गुस्सा तो एक ऐसी चीज है जो हम दूसरों पर तो करते ही हैं, खुद पर भी करते हैं। ये कार्यक्रम जो है वो किसान भाइयों को समर्पित है और कई बार ऐसा होता है कि हमें लगातार प्रयास करने के बाद सफलता हाथ नहीं लगती और वो असफलताएं कहीं ना कहीं हमारे अंदर हताशा और निराशा ले आती हैं। तो हम कई बार खुद पर भी नाराज हो जाते हैं, खुद से नफरत करने लगते हैं, खुद के भाग्य से नफरत करने लगते हैं, यहां तक कि भाग्य विधाता से नफरत करने लगते हैं। तो ये नफरत भी गुस्से का ही एक रूप है। दूसरों को उनकी गलतियों के लिए माफ करना या दूसरों के द्वारा जो दिलाया हुआ गुस्सा है उसको नजरअंदाज करना, ये तो एक बात आती ही आती है, लेकिन पहले हमें खुद को भी तो माफ करना होगा और खुद ये जो लगातार हमें असफलताएं मिल रही हैं हमें इसके लिए भी तैयार होना होगा। हमारा मूल स्वरूप, जैसा आपने ही बताया था, शांति है, प्रेम है, आनंद है। तो हमें आनंद की स्थिति में हम स्थिर हों, शांति की स्थिति में हमारा मन बना रहे, प्रेम स्वरूप हम बने रहें, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, ये किस तरह से हम निवारण पा सकते हैं इस बीमारी से?
गुस्से की बीमारी से निवारण करने के लिए एक बहुत ही बढ़िया फार्मूला जिसे हम कह सकते हैं वो है फॉरगिव एंड फॉरगेट। कि अगर कोई व्यक्ति आपसे गलत व्यवहार करता है, गलतियां करता है, आपका अपमान करता है, ऐसे आपसे डील करता है जो उसे नहीं करना चाहिए, वो कड़वी बातें, उन्हें हम भुलाना सीखें। जब तक हम भूतकाल की बातों को भुलाएंगे नहीं तो वो भूत बनकर हमें परेशान करते रहेंगे और वो बदले के ख्यालात मन में चलते रहेंगे और माफ हम नहीं कर सकते। और माफ करना एक बहुत ही बढ़िया तरीका है गुस्से को छोड़ने का, लेकिन माफ हम तब कर पाएंगे जब हमारे पास वो ताकत होगी भूतकाल की पास्ट की बातों को भुलाने की। और माफी के ऊपर गालिब का एक बड़ा मशहूर शेर है कि कुछ इस तरह मैंने जिंदगी को आसान कर दिया, कुछ इस तरह मैंने जिंदगी को आसान कर दिया, किसी से माफी मांग ली और किसी को माफ कर दिया।
क्या बात है।
तो जिंदगी बहुत खूबसूरत है, जिंदगी बहुत बढ़िया है, ये आनंद का एक क्षेत्र है, आनंद मौज के लिए हम इस दुनिया में आए हैं, लेकिन ये आनंद की जिंदगी गुस्से में आकर तबाह हो जाती है। गुस्सा हमारे जीवन को कितना नुकसान पहुंचाता है। कई बार हमें लगता है कि आज के समाज में गुस्सा किए बिना काम ही नहीं हो सकता, हमें ऐसी मानसिकता बन गई है। हम लॉजिक देते हैं कि लोहा ही लोहे को काटता है, लेकिन कौन सा लोहा कौन से लोहे को काटता है? आपने देखा होगा किसान भाई लोहे के औजार बनाते हैं, तो देखा गया कैसे औजार बनते हैं। औजार बनते हैं जब ठंडा लोहा गर्म लोहे के ऊपर पड़ता है तब उसको कई तरह की शेप दी जाती है
जी।
तो अगर कोई व्यक्ति आपसे गलत व्यवहार करता है, गर्म होता है, गुस्सा करता है, तो उसका निवारण सबसे बड़ा ये है कि हम शांत रहें। शांति में रह के ही उसका भी परिवर्तन हो सकता है
जी।
और जो संबंध हमारे हैं, एक छोटे से गुस्से के कारण कितना संबंध खराब हो जाते हैं। किसी ने इसके ऊपर भी कहा है कि तमाम उम्र भी कम है दोस्ती निभाने के लिए, तमाम उम्र भी कम है दोस्ती निभाने के लिए, ना जाने कैसे वक्त निकाल लेते हैं लोग दुश्मनी के लिए।
क्या बात, बहुत।
आज इतनी छोटी सी जिंदगी हमारी है और उस छोटी सी जिंदगी को भी हम गुस्सा करके, इरिटेट होके, अपनी वाणी का गलत प्रयोग करके, अपशब्द बोल के अपने संबंधों को खराब कर देते हैं। इस छोटी सी जिंदगी में आज हम हैं, कल हो या ना हो क्या पता, तो क्यों ना हम दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार करें जैसा व्यवहार हम दूसरों से चाहते हैं। इसके लिए जो मैंने कहा कि माफ करना एक बहुत बड़ी कला है
जी।
हमें सीखना होगा कि कैसे माफ करें। इंग्लिश में कहते हैं टू एर इज ह्यूमन, फॉरगिव इज डिवाइन। मतलब इंसान गलतियों का पुतला है, वो गलतियां करेगा, लेकिन डिविनिटी, दिव्यता इस बात में है कि हम उनको माफ कर दें। भगवान भी क्या करता है, माफ करता है। कितने लोग गलतियां करते हैं दुनिया में, क्या भगवान सबको सजा उसी वक्त दे देता है? नहीं, वो भी सबको माफ करता है। तो हम भी क्षमा करना सीखें, माफ करना सीखें, क्योंकि माफी में ऐसा गुण है जो आपके मन को शांत करता है। हम दूसरों को इसलिए माफ नहीं कर रहे कि दूसरे लोग माफी के हकदार हैं, बल्कि हम दूसरों को इसलिए माफ कर रहे हैं क्योंकि हम शांति के हकदार हैं
जी।
जब तक माफ नहीं करेंगे तब तक मन में शांति नहीं आएगी, बदले के ख्यालात आते रहेंगे। इसके ऊपर एक कहीं लिखा था बहुत अच्छा स्लोगन कि दूसरों की गलती के लिए उन्हें हम उतनी जल्दी माफ कर दिया करें जितनी जल्दी हम अपनी गलतियों के लिए भगवान से माफी की उम्मीद रखते हैं।
क्या बात।
एक और स्लोगन ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर लिखा हुआ था, बड़ी अच्छी बात थी जो मैंने नोट की। उसमें लिखा था कि भगवान कहता है कि तुम रात को सोने से पहले दूसरों की गलतियों के लिए उन्हें माफ कर दिया करो, और मैं हर रोज सवेरे उठने से पहले तुम्हें तुम्हारी गलतियों के लिए माफ कर दिया करूंगा।
क्या बात।
तो माफ करना हम सीखें। माफी एक ऐसी चीज है जिसको, एक ऐसी कला जिसे हम कह सकते हैं, जो गुस्से को बड़ी जल्दी हमसे दूर कर सकती है। इसलिए माफी करना बहुत बड़ा गुण है, फॉरगिव।
जी 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 भाई जी, आपने बहुत सुंदर और सरल शब्दों में बताया हमें कि माफी करने का जो गुण होता है, क्षमा देने का जो गुण होता है, वो स्वयं में दिव्यता लाता है और हमें बड़ा भी बनाता है, और गुस्से से छुटकारा भी बड़ी आसानी से पाया जा सकता है। ये सब बातें, कुछ भूतकाल की भी आपने बात की कि भूतकाल की हुई की जितनी भी बीती हुई बातें हैं उनको भी विस्मृत करना होगा, उन्हें भी भुलाना होगा, तब कहीं जाकर के हम वर्तमान में जी पाएंगे और जीवन जो खूबसूरत है उसका आनंद ले पाएंगे। पर जैसा कि मैं आपसे जानना चाह रहा था कि किसान अपने आप से कई बार नाराज हो जाता है, अपनी असफलताओं से नाराज हो जाता है, वो अपने भाग्य से नाराज हो जाता है, भाग्य विधाता से नाराज हो जाता है, खुद से खफा हो जाता है, खुद को कोसने लग जाता है, और इसी नाराजगी में इसी कहीं ना कहीं वो निराशा और हताशा को गले लगा लेता है। तो खुद से हुई नाराजगी, उससे कैसे निपटा जा सकता है, खुद को कैसे माफ किया जा सकता है, क्या इसकी भी कुछ टिप्स हैं?
कई दफा ऐसा देखा गया है कि जब बार बार हमारे किसान भाइयों को असफलता का सामना करना पड़ता है, जिस काम में वो हाथ डालते हैं वहीं विफलता मिलती है
जी,
तो ये स्वाभाविक है कि निराशा हताशा उसके पास आए। लेकिन आप देखिए, निराशा और हताशा जो वर्ड्स, शब्द आपने इस्तेमाल किए, ये हैं क्या? ये भी एक किस्म की सोच है। जब हम अपने बारे में लगातार नेगेटिव विचार चलाते हैं, कमजोरी के विचार चलाते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, शायद मेरी किस्मत खराब है, शायद मेरा भाग्य ही ऐसा है, मेरे मुकद्दर में ही ऐसा लिखा हुआ है, पता नहीं मेरे ऊपर कहीं ग्रहचारी तो नहीं बैठ गई, पता नहीं क्या भगवान मेरे से नाराज तो नहीं। तमाम तरह के विचार हमारे मन में जब उठने लगते हैं तो हम निराशा के वातावरण में घिर जाते हैं। अब इससे ऊपर उठने का तरीका भी विचार है। जैसे विचार, गलत विचार आपको निराशा में ले आए, तो अगर आपके पास सही विचारों का भंडार होगा, अच्छे विचार आपके बुद्धि में, आपके मानसिक पटल में होंगे, एक विचार नेगेटिव विचार को कैंसिल करने का तरीका भी पॉजिटिव विचार है। अगर गलत विचार आपके मन में आके आपको उदास कर रहा है, तो उससे निकलने का तरीका है कि आप एक अच्छा विचार लाइए। अच्छा विचार क्या हो सकता है कि जब बार बार आपके साथ विफलताएं जीवन में आए, बार बार आपको पीछे रहना पड़े, उस वक्त आप क्या सोचें, उसके लिए आपके पास विचार होने चाहिए और वो विचार आपको ताकत दे सकते हैं। एक विचार ऐसी परिस्थिति से निकलने का ये है कि हम ये सोचें कि इस दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसके पीछे एक कोई ना कोई कारण है, मुझे उस कारण को समझना है और उसके अनुसार अपना जीवन बनाना है। एक पॉजिटिव विचार हो सकता है कि जो कुछ होता है वो अच्छे के लिए होता है, हो सकता है ये छोटी सी हार है, लेकिन ये छोटी सी हार तो सामने दिखाई दे रही है, इससे मुझे मायूस नहीं होना है, उदास नहीं होना है, मुझे तत्पर रहना है अपने प्रयासों में, अपनी मेहनत में, और एक दिन आएगा कि कामयाबी मेरे कदमों पे होगी। किसी ने एक बड़ी अच्छी बात इस विषय में भी कही है कि दूसरे की कामयाबी को देखकर और अपनी विफलता को देखकर कभी उदास नहीं होना चाहिए, क्योंकि महल बनाने को टाइम लगता है, मकान बहुत जल्दी बन जाते हैं। अगर आपको कामयाबी नहीं मिल रही, घबराइए मत, आप महल बनाने के लिए काम कर रहे हैं, समय लगेगा, धीरज रखिए, एक दिन आपका भी समय आएगा और आप सफलता की बुलंदियों को छुएंगे। जरूरत है केवल सकारात्मक रहने की, हिम्मत से काम लेने की और अपने आप को उमंग उत्साह में रखने की।
जी पंकज भाई जी, बड़ी अच्छी बात आपने कही कि छोटी छोटी विफलताएं जो हैं वो कहीं ना कहीं बड़ी सफलता हमारे सामने ला रही होती हैं, बस उतनी देर होती है, पर यह धैर्य बनाए रखना होता है। और इसी से मुझे याद आया सहनशीलता, क्योंकि सहनशीलता ही एक ऐसा आपका शस्त्र हो सकता है या आपकी ढाल हो सकती है जो आपको गुस्से वाली परिस्थितियों से बचाती है। मगर दुनिया में एक भ्रांति फैल गई है कि सहन करना मतलब तो वो तो कमजोरी है, वो तो कायरता है, तो इसमें इसके बारे में कुछ स्पष्टता आपसे चाहेंगे।
गुस्से को काबू में करने का अगर मैं कहूं नंबर दो पे कोई फार्मूला है तो वो है अपनी सहन शक्ति को बढ़ाना। दुनिया में जितनी भी बुराइयां हैं उनके पीछे एक ना एक अच्छाई जरूर है, उस बुराई को दूर करने के लिए एक अच्छाई होती है। जैसे मान लो अंधकार है, अब अंधकार को दूर करने का तरीका है कि आप रोशनी कर दीजिए।
हाँ जी।
मान लो हम नफरत की बात करते हैं, तो नफरत को खत्म करना है तो आप उसकी जगह प्यार को बढ़ा दीजिए। उसी तरह अगर आपने गुस्से को खत्म करना है या उसको काबू में करना है तो उसका मूल मंत्र है कि आप गुस्से से जो उल्टा है वो है सहन शक्ति, सहन शक्ति को बढ़ा दीजिए। जितनी सहन शक्ति हमारे जीवन में आएगी उतना हम गुस्से को काबू में कर सकते हैं। और इसके बारे में एक बड़ी अच्छी बात किसी ने कही है कि होंठों तक आई बात को भी निगलना पड़ता है। होंठों तक आई बात को भी निगलना पड़ता है, फौलाद बनने के लिए लोहे को भी पिघलना पड़ता है। तपे बिना कोई सोना निर्मल नहीं बनता, जग को रोशन करने के लिए दिए को भी जलना पड़ता है।
जी बिल्कुल, क्या बात कही आपने।
मतलब अगर हमने कुछ करना है इस समाज में, कुछ समाज को देना है, तो दिए की तरह जलना तो पड़ेगा, तभी रोशनी आएगी। आप देखेंगे कि जितने भी महान लोग इस दुनिया में होके गए हैं उन्होंने बहुत कुछ सहन किया है, या आप यूं कह दीजिए कि जितने आप महान बनते जाएंगे, आप बड़े बनते जाएंगे, आपको सहन करना पड़ेगा। लेकिन कई बार लोगों को लगता है कि जब कोई गुस्सा उनके ऊपर करे, उन्हें नुकसान पहुंचाए और वो चुप रहे, सहन शक्ति दिखाए, तो लोगों को ये भ्रम लगता है कि ये व्यक्ति शायद कमजोर है, बुजदिल है, मजबूर है, तब ये सहन कर रहा है। लेकिन ये बहुत बड़ी अज्ञानता है। सहन करना एक शक्ति है, तभी इसको सहन शक्ति, टॉलरेंस पावर कहा जाता है। ये कमजोरी नहीं है, ये बुजदिली नहीं, ये मजबूरी नहीं, बल्कि इंसान की सबसे बड़ी मजबूती है। मान लीजिए एक ट्रेन है, एक ट्रेन एक पुल के ऊपर से गुजर रही है, उस पुल के ऊपर से बहुत भारी भारी माल से लदे हुए ट्रक भी गुजरते हैं। अब हम कहते हैं वो पुल, उसकी टॉलरेंस पावर इतनी है कि वो रेलगाड़ी का वजन भी सहन कर सकता है, वो भारी भारी ट्रकों का वजन भी सहन कर सकता है, उसकी टॉलरेंस पावर इतनी है। दैट इसका मतलब ये हुआ कि टॉलरेंस पावर जरूरी है। एक हाथी है, हाथी के ऊपर कितने पंछी बैठ जाते हैं, कितने उसके ऊपर पंछी बैठ के चलते रहते हैं, हाथी को पता भी नहीं चलता। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हाथी कमजोर है, हाथी के अंदर बुजदिल है, ऐसा तो नहीं। घरों में आप देख लीजिए, बुजुर्ग हैं, दादा दादी हैं, घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, वो उनके कंधे पे जाके बैठ जाएंगे, उनकी मूछें पकड़ने लग जाएंगे। दादाजी फिर भी बच्चे से प्यार करते हैं, कुछ उसे कहते नहीं है। क्यों नहीं कहते? क्योंकि दादाजी को पता है कि मैंने प्यार करना है। और इसका मतलब ये नहीं कि दादाजी कमजोर है, इसका मतलब ये है कि दादाजी में ताकत है, सहन शक्ति है, और ये होनी चाहिए। कमजोरी तो ये है कि जब व्यक्ति छोटी छोटी बातों पे बिगड़ जाता है, और बहादुरी ये है कि कोई व्यक्ति को कुछ भी कहे और वो चुप रहे, उसकी इंसल्ट भी करे तब भी अगर वो चुप रह सकता है, तो ये बहादुरी है, ये अंदर की ताकत है, इसे सहनशीलता या सहन शक्ति कहा जाता है। इसलिए मन में ये दुविधा ना रहे कि सहन शक्ति अगर मैं दिखाऊंगा तो लोग क्या समझेंगे। नहीं, सहन करना बहुत बड़ा दिव्य गुण है, और उस गुण को हमें अपने जीवन में लाना होगा, और उसको लाने के लिए अपने आप को समझाना होगा, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि ये सहन शक्ति अच्छी बात है, दिव्य गुण है, इसको कहां, कैसे, किन परिस्थितियों में इस्तेमाल करना है, वो थोड़ा सा अपने आप को क्लियर रखें तो ये चीज हमें गुस्से को काबू में करने में बहुत मदद कर सकती है।
जी भाई जी। दोस्तों, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा हम धरती माँ के सीने पर हल चलाते हैं, बीज बोते हैं, और फिर धरती माँ ये सब दर्द सहने के बाद हमें अच्छी फसल और अच्छी पैदावार देती है। तो वाकई में सहन करना कमजोरी तो नहीं कहा जा सकता, शक्ति ही है। किसी फल से लदे हुए वृक्ष पर भी जब हम पत्थर मारते हैं या डंडा मारते हैं तो हमें बदले में फल भी मिलता है और छाया भी मिलती है। ऐसा तो नहीं कि पेड़ हमें बदले में मार देता है। तो देगा वही जिसके पास ताकत होगी, सहन वही कर पाएगा जिसके पास ये ताकत होगी। अगर ये ताकत नहीं तो हमारे अंदर न देने की शक्ति होगी, न माफ करने की शक्ति होगी। तो इस गुण को, जैसा कि ओमकार भाई ने बताया, हमें अपनाना तो जरूर होगा। ओमकार भाई, क्या कुछ और भी ऐसे तरीके हैं जिससे गुस्से की परिस्थितियों पर काबू पाया जा सके, या गुस्से की मानसिक अवस्था बन रही हो तो उस पर नियंत्रण पाया जा सके?
बहुत से तरीके हैं, बहुत से मेथड्स हैं जिनको हम अपनाकर अपने आप को समझा सकते हैं और गुस्से पर काबू कर सकते हैं। एक और छोटा सा तरीका मैं बताता हूं कि हम सदा ये समझें कि ये दुनिया एक नाटकशाला है और ड्रामा है, और हम सब यहां पर पार्ट प्ले कर रहे हैं, हम सब एक्टर हैं। अब ड्रामा में हर एक्टर को कोई रोल मिला होता है, कोई एक्टिंग मिली होती है, एक स्क्रिप्ट मिली होती है, उसके अकॉर्डिंग वो अपना रोल प्ले कर सकता है। हम किसी भी व्यक्ति के रोल को नहीं बदल सकते ड्रामा में, क्योंकि हर एक की एक फिक्स्ड स्क्रिप्ट है। आप रामलीला में कहें राम को कि राम आप रावण वाला पार्ट बजा लो, रावण को कहें कि आप रावण क्यों बने हो, आप लक्ष्मण की तरह बन जाओ, नहीं, हर एक को एक रोल है। लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण का ही पार्ट प्ले करना है, ककई ने ककई का रोल प्ले करना है, रावण ने रावण का ही रोल प्ले करना है। हम किसी के रोल को, किसी की एक्टिंग को नहीं बदल सकते। उसी तरह इस दुनिया में जिस व्यक्ति ने गलतियां करनी है, जिनके ऊपर हमें गुस्सा आता है, तो उस व्यक्ति ने गलतियां करनी ही हैं, क्योंकि उसका रोल ही वो है। गलतियां हम भी करते हैं, लेकिन अगर उसका रोल गलती करने का है, हम उसे रोक नहीं सकते। हम अपने आप को रोक सकते हैं कि मुझे गुस्सा करने की गलती नहीं करनी है, मुझे राम का रोल प्ले करना है, मुझे रावण का रोल नहीं प्ले करना है, मुझे हर चीज में धीरज प्यार दिखाना है, शांति से काम लेना है, तभी मैं एक अच्छा रोल इस ड्रामा में बजा सकता हूं। तो ये भी एक मेथड है।
जी भाई जी, दोस्तों ये बड़ी अच्छी बात है, और इस विधि को यदि हमें अपनाना है तो हमें अपनी जिंदगी में खुद को एक हीरो की तरह देखना पड़ेगा, अपनी खुद की जिंदगी को एक फिल्म की तरह देखना पड़ेगा। जैसे कि हम आज जब सिनेमाघरों में जाते हैं तो दूसरे हीरो की पिक्चर देखते हैं, क्योंकि तभी हम अपने आप को एक्टर समझेंगे और दूसरों को भी एक्टर समझेंगे। और एक एक्टर का धर्म अपनी एक्टिंग सुधारना है, न कि दूसरे एक्टर को निर्देशित करना। ये तो डायरेक्टर का काम है, वही दूसरे को बदल सकता है या दूसरे का पार्ट बदल सकता है। ओमकार भाई जी, ये जो बहुत सारी विधियां आप बता रहे हैं ये बहुत अच्छी हैं, और इन्हें मुझे ऐसा लगता है कि हमारे किसान भाई सुनकर के प्रयोग में भी लाएंगे। लेकिन क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे ये सभी शक्तियां और ये सभी विधियां हमें आसानी से एक ही बार में मिल जाएं?
बहुत से तरीके हैं, बहुत सी विधियां हैं, लेकिन मूल विधि जो इन सब विधियों के पीछे भी छिपी हुई है वो है कि जितना हमारा मन उस परमात्मा में लगता होगा, जिसे हम राजयोग मेडिटेशन ध्यान की विधि कहते हैं
जी।
जिस व्यक्ति का मन परमात्मा के ऊपर केंद्रित हो जाता है, परमात्मा की सारी शक्तियां उसके पास आ जाती हैं। जो वो चाहता है वैसा कार्य कर सकता है। हम सब चाहते हैं कि गुस्से से हमें निजात मिले, लेकिन हमारे पास उतनी ताकत नहीं है। चाहते हुए भी हम गुस्से के अधीन हो जाते हैं, क्योंकि हमारा मनोबल बहुत कमजोर हो चुका है। उस मनोबल को बढ़ाने का एक सिंपल सा तरीका है कि बीच बीच में कार्य करते हुए हम अपना मन परमात्मा से जोड़ना सीख लें। परमात्मा से जितना हमारा मन लगेगा, उतनी चार्जिंग हमारे मन की, हमारी आत्मा की होगी, और उतनी ताकत हमारे अंदर आएगी इन सब बातों को जीवन में उतारने की। तो मेडिटेशन, राजयोग हमें अंदर से मजबूत बनाता है, हमारी अंदर की शक्तियों को बढ़ाता है, जिससे हम सहनशील भी बन जाते हैं, दूसरों को माफ करने की ताकत भी हमारी बढ़ने लगती है, और हम गुस्से पे बहुत जल्दी कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए मैं तो ये कहूंगा कि सभी किसान भाई बीच बीच में समय निकालकर अपने मन को शांत करके उस परमात्मा के लिए, परमात्मा की यादों में दो दो मिनट भी, अगर एक घंटे में, दो घंटे में हम याद करेंगे और उससे वार्तालाप करेंगे, उससे शक्तियां ग्रहण करेंगे, तो गुस्सा तो बहुत छोटी सी बात है, बड़े बड़े काम भी हम कर सकते हैं।
क्या बात है दोस्तों, शाश्वत योगिक खेती का आधार ही है राजयोग, और राजयोग का आधार है आत्मा और परमात्मा का मिलन, वो भी श्रेष्ठ संकल्पों द्वारा। क्योंकि आत्मा जब अपने मन और बुद्धि को परमात्मा के स्वरूप पर केंद्रित करती है, इसे ही ध्यान करना कहा जाता है, इसे ही राजयोग मेडिटेशन कहा जाता है। और यहां वहां ध्यान भटके, बीती हुई बातों में ध्यान भटके, या किसी ऐसी परिस्थिति पर ध्यान केंद्रित हो जाए जो कि गुस्सा दिलाने वाली हो, नाराजगी लाने वाली हो, उससे तो बेहतर है, जैसा हमें ओमकार भाई ने बताया, कि बीच बीच में एक एक या दो दो मिनट के लिए हम परमात्मा के स्वरूप पर ध्यान केंद्रित करें, परमात्मा में मन लगाएं, तो शायद हमें वो सारी शक्तियां प्राप्त हो जाएंगी जो परमात्मा में हैं, और फिर हम वो सब कर पाएंगे जो हम वाकई में करना चाहते हैं। गुस्सा एक ऐसा विकराल राक्षस जिसने हमारे ऊपर काबू कर लिया था, लेकिन शाश्वत योगिक खेती इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने ओमकार भाई से चर्चा की, गुस्से को जाना, गुस्से के प्रकार को जाना, गुस्से के रूप को जाना, गुस्सा किन कारणों से आता है, इन सारे कारणों को जाना, और इन सभी बातों के साथ साथ हमने निवारण को भी जाना। हम ओमकार भाई का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जो कि अपना कीमती समय लेकर के हमारे बीच में आए और हमें बहुत सरल उदाहरणों के माध्यम से गुस्से पर काबू करने की स्पष्टता दी। बहुत बहुत शुक्रिया।
धन्यवाद। ओम शांति।
तो प्यारे दोस्तों, आज के कार्यक्रम में हमने जाना कि गुस्से जैसा विकराल राक्षस, इस पर भी काबू पाया जा सकता है। कुछ विधियां हैं, और सबसे बड़ी विधि है परमात्मा में मन लगा देना, राजयोग मेडिटेशन सीख लेना, राजयोग ध्यान सीख लेना, और शाश्वत यौगिक खेती का आधार भी तो राजयोग ही है। राजयोग से ही हमारे मन पर नियंत्रण आएगा, हम अपने मन को आदेश दे पाएंगे कि किस तरह उसे श्रेष्ठ संकल्प करने हैं, श्रेष्ठ आचरण अपनाना है, श्रेष्ठ व्यवहार अपनाना है, उसे जीवन में धारण करना है और किस तरह से फिर उसे कार्य व्यवहार में ले जाना है, खेती और किसानी तक ले जाना है। क्योंकि आप किसान भाई ही अन्नदाता कहलाते हैं और अन्नदाता का मन और तन दोनों स्वस्थ रहे तभी स्वस्थ फसल हम सब पा पाएंगे। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। कार्यक्रम की अगली कड़ी में एक नए विषय के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, रखिए अपना बेहतर ख्याल। नमस्कार।